ಉಮಜ್ಞಾಜ್ವಿನಂದಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷರೋನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮೈಹಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ. ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಾಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣಾರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಹರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ. ಶ್ರೀರಾಧಾಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಾಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ. ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮೀನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯದೇಶತಾರಿಣೇ. ನಮಃ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರೇಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತೀನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ಶ್ರೀವಾರ್ಷಭಾನವೇ ದೇವಿ ದಯಿತಾಯ ಕೃಪಾಬ್ಧಯೇ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಬಂಧ ವಿಜ್ಞಾನ ದಾಯಿನೇ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ. ಮಾಧುರ್ಯೋಜ್ವಲ ಪ್ರೇಮಾಢ್ಯ ಶ್ರೀರೂಪಾನುಗಾ ಭಕ್ತಿದ ಶ್ರೀಗೌರಕರುಣಾಶಕ್ತಿ ವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಗೌರವಾಣಿ ಶ್ರೀಮೂರ್ತಯೇ ದೀನತಾರಿಣೇ ರೂಪಾನುಗಾ ವಿರುದ್ಧಾಪ ಸಿದ್ಧಾಂತದ್ವಂತಹಾರಿಣೆ. ನಮೋ ಗೌರಕಿಶೋರಾಯ ಸಾಕ್ಷಾದ್ವೈರಾಗ್ಯಮೂರ್ತಯೇ ವಿಪ್ರಲಂಬಾರ ಸಾಂಬೋಧೇ ಪಾದಾಂಬುಜಾಯ ತೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದಾಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾಮಿನೇ ಗೌರಶಕ್ತಿಸ್ವರೂಪಾಯ ರೂಪಾನುಗಾವರಾಯ ತೇ. ಗೌರಾವಿರ್ಭಾವ ಭೂಮೇಸ್ತ್ವಂ ನಿರ್ದೇಷ್ಟ ಸಜ್ಜನ ಪ್ರಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಸಾರ್ವಭೌಮಃ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ತೇ ನಮಃ. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಉಭ್ಯೈವಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಜಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರದ್ವಿಷೇ ನಮಃ. ಪಂಚತತ್ವಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಭಕ್ತರೂಪಸ್ವರೂಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತಾರಂ ಭಕ್ತಾಖ್ಯಂ ನಮಾಮಿ ಭಕ್ತಶಕ್ತಿಕಂ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೌ ದೀನಬಂಧೌ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಜಯತಾಂ ಸುರತೋರ್ಪಂಗುರ್ ಮಾಮಂದಮತೇರ್ಗತಿ ಮತ್ಸರ್ವಸ್ವಾಪದಾಂಬೋಜೌ ರಾಧಾಮದನಮೋಹನೋ. ದಿವ್ಯದೃಂದಾರಣ್ಯಕಲ್ಪದ್ರುಮಾದಃ ಶ್ರೀಮದ್ರತ್ನಾಗಾರಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥೋ ಶ್ರೀಮದ್ರಾಧಾಶೀಲಗೋವಿಂದದೇವೋ ಪ್ರಶ್ರಾಲಿವ್ಯಸೇವ್ಯಮಾನೋ ಸ್ಮರಾಮಿ. ಶ್ರೀಮಾನ್ ರಾಸರಸಾರಂಭಿ ವಂಶೀವಟತಟಸ್ಥಿತಃ ಕರ್ಷಂ ವೇಣೋಸ್ವನೇರ್ಗೋಪೀರ್ ಗೋಪಿನಾಥಃ ಶ್ರೀಯಸ್ತು ನಃ. ತಪ್ತಕಾಂಚನಗೌರಾಂಗಿ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ. ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀಯದ್ವೈತ ಗದಾಧರ್ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣು ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇ. ಯಸ್ವದ್ವಿರದವಕ್ತ್ರಾದಃ ಪಾರಿಸತ್ಯಾತ್ ಪರಸ್ಸದಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಷೇಣಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ. ಪೂಜಂತಂ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ಮಧುರಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ ಆರುಹ್ಯ ಕವಿತಾ ಶಾಖಂ ವಂದೇ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೋಕಿಲಂ. ವಾಲ್ಮೀಕೇರ್ಮುನಿಸಿಂಹಸ್ಯ ಕವಿತಾವನಚಾರಿಣಃ ಶೃಣ್ವಂ ರಾಮಕಥಾನಾಥಂ ಕೋನಯಾಂತಿ ಪರಾಂ ಗತಿಂ. ಯಪಿಬಂ ಸತತಂ ರಾಮಚರಿತಾಮೃತಸಾಗರಂ ಅತೃಪ್ತಸ್ಥಂ ಮುನಿಂ ವಂದೇ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಮಕಲ್ಮಷಂ. ಗೋಷ್ಪದೀಕೃತವಾರಾಶಿಂ ಮಸಕೀಕೃತರಾಕ್ಷಸಂ ರಾಮಾಯಣಂ ಮಹಾಮಾಲಾ ರತ್ನಂ ವಂದೇ ನೀಲಾತ್ಮಜಂ. ಅಂಜನಾನಂದನಂ ವೀರಂ ಜಾನಕೀಶೋಕನಾಶನಂ ಕಪೀಶಂ ಕ್ಷಾಂತಾರಂ ವಂದೇ ಲಂಕಾಭಯಂಕರಂ. ಉಲ್ಲಂಗಸಿಂಧೋ ಸಲಿಲಂ ಸಲೀಲಂ ಇಹ ಶೋಕವಹ್ನಿಂ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯಾಹ ಆದಾಯ ತೇನೈವ ದದಾಹ ಲಂಕಾಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ಪ್ರಾಂಜಲಿನಾಂಜನೇಯಂ ಆಂಜನೇಯಮತಿಪಾಟಲಾನನಂ ಕಂಚನಾದ್ರಿಕಮನೀಯ ವಿಗ್ರಹಂ ಪಾರಿಜಾತತರುಮೂಲವಾಸಿನಂ ಭಾವಯಾಮಿ ಪವಮಾನನಂದನಂ ಯತ್ರ ಯತ್ರ ರಘುನಾಥಕೀರ್ತನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಂ ಭಾಷ್ಪವಾರಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಲೋಚನಂ ಮಾರುತಿಂ ನಮತ ರಾಕ್ಷಸಾಂತಕಂ ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಪಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಇಹ ಕರ್ಣಾಂಜಲಿರ್ಸಂಪುಟೈರಹರ ಸಮ್ಯಕ್ ಪಿಪತ್ಯಾದರಾತ್ ವಾಲ್ಮೀಕೇರ್ವದನಾರವಿಂದಗಳಿತಂ ರಾಮಾಯಣಾಖ್ಯಂ ಮಧು ಜನ್ಮವ್ಯಾಧಿಜರಾವಿತಪ್ತಿಮರಣಾತ್ ಅತ್ಯಂತ ಸೋಪದ್ರುವಂ ಸಂಸಾರಸವಿಹಾಯ ಗಚ್ಚತಿ ಪುಮಾನ್ ವಿಷ್ಣೋಪದಂ ಶಾಶ್ವತಂ ತದುಪಗತ ಸಮಾಸ ಸಂಧಿಯೋಗಂ ಸಮಧುರೋಪನಾಥಾರ್ಥವಾಕ್ಯಬದ್ಧಂ ರಘುವರಚರಿತಂ ಮುನಿಪ್ರಣೀತಂ ದಶಶರಶ್ಚವದಂ ನಿಶಾಮಯದ್ಧಂ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಿರಿಸಂಭೂತ ರಾಮಸಾಗರಗಾಮಿನೀ ಪುನಾತ್ ಭುವನಂ ಪುಣ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾನದೀ ಶ್ಲೋಕಸಾರಾಜ್ಯಸಂಕೀರ್ಣಂ ಸರ್ಗಕಲ್ಲೋಲಸಂಕುಲಂ ಕಾಂಡಗ್ರಾಹಮಹಾಮೀನಂ ವಂದೇ ರಾಮಾಯಣಾರ್ಣವಂ ವೇದವೇದ್ಯೇ ವರೇ ಪುಂಸಿ ಜಾತೆ ದಶರಥಾತ್ಮಜೇ ವೇದೇ ಪ್ರಾಚೇತ ಸಾಸೀತ್ ಸಾಕ್ಷಾಯ ರಾಮಾಯಣಾತ್ಮನ ವೈದೇಹಿ ಸಮಿತ ಸಹಿತಂ ಸಮುದ್ರಮತಲೆ ಹೈಮೇ ಮಹಾಮಂಡಪೇ ಮಧ್ಯೆ ಪುಷ್ಪಕಮಾಸನೆ ಮಣಿಮಯೇ ವೀರಾಸನೆ ಸುಸ್ಥಿತಂ ಅಗ್ರೇ ವಾಚಯತಿ ಪ್ರಭಂಜನಸುತೇ ತತ್ವಂ ಮುನಿಭ್ಯೇ ಪರಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂತಂ ಭರತಾದಿಭಿಃ ಪ್ರವೃತಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ ವಾಮೇ ಭೂಮಿಸುತ ಪುರಶ್ಚ ಹನುಮಾನ್ ಪಶ್ಚಾತ್ ಸುಮಿತ್ರಾಸುತ ಶತ್ರುಘ್ನೋ ಭರತಶ್ಚ ಪಾರ್ಶ್ವದಳಯೋರ್ ವ್ಯಾದೇಶು ಕೋನೇಶು ಚ ಸುಗ್ರೀವಶ್ಚ ವಿಭೀಷಣಶ್ಚ ವಿವರಾತ್ ತಾರಾಸುತೋ ಜಾಂಬವಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ನೀಲಸರೋಜಕೋಮಲರುಚಿಂ ರಾಮಂ ಭಜೇ ಶ್ಯಾಮಲಂ ನಮೋಸ್ತು ರಾಮಾಯ ಸಲಕ್ಷ್ಮಣಾಯ ದೇವ್ಯೈ ಚ ತಸ್ಮೈ ಜನಕಾತ್ಮಜಾಯೈ ನಮೋಸ್ತು ರುದ್ರೇಂದ್ರಿಯಾನಿಲೇಭ್ಯೋ ನಮೋಸ್ತು ಚಂದ್ರಾರ್ಕಮೃದ್ಗಣೇಭ್ಯಃ ಅಸ್ತ್ರವಿಜೇತಾಂ ರಾಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಃ ರಾಜಾ ಜಯತಿ ಸುಗ್ರೀವೋ ರಾಘವೇಣ ವಿಪಾಲಿತಃ ತಾಸೋಹಂ ಕೌಶಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ರಾಮಸ್ಯ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ್ಮಣಃ ಹನುಮಾನ್ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಾನಾಂ ನಿಹತ್ಯ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಃ ನರಾವಣಂ ಸಹಸ್ರಂ ಮೇ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರತಿಫಲಂ ಭವೇತ್ ಶಿಲಾಭೀತು ಪ್ರಹರತಃ ಪಾದಪೈಶ್ಚ ಸಹಸ್ರಶಃ ಅರ್ಥಯಿತ್ವಾ ಪುರಿಂ ಲಂಕಾಂ ಅಭಿವಾದಯಚ್ಚ ಮೈಥಿಲೀಂ ಸಮುದ್ಯರ್ಥೋ ಗಮಯಿಷ್ಯಾಮಿ ವಿಶುತಾಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಸಾಂ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಸಂಧಶ್ಚ ರಾಮೋ ದಾಶದೀರ್ ಯದಿ ಪೌರುಷೋ ಚ ಪ್ರತಿಂದಸ್ತಂ ತೇನೇದಂ ಚೈಹಿ ರಾವಣೀಂ ಆಪದಾಮಪಹರ್ತಾರಂ ದಾತಾರಂ ಸರ್ವಸಂಪದಾಂ ಲೋಕಾಭಿರಾಮಂ ಶ್ರೀರಾಮಂ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ನಿರತಂ ತಪಸ್ವೀ ವಾಂಗ್ವಿದಾಂಬರಂ ನಾರದಂ ಪರಿಪ್ರಪೃಚ್ಛ ವಾಲ್ಮೀಕಿರ್ಮುನಿಪುಂಗಮಂ ರಮಾಯ ನಮಃ. ಕಲ್ ಹಂ ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ್ ಕೆ ವಿಷಯ ಮೇ ಚರ್ಚಾ ಕಿಯಾ. ಸೀತಾ ಸ್ವಯಂವರ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಿಥಿಲಾ ಜೈಸೆ ಪಹುಂಚೆ, ಶಿತಾನಂದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕಿ ಚರಿತ್ರ ಕೋ ಸುನಾಯ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕಾ ಅದ್ಭುತ ಚರಿತ್ರ ಹೇ ಔರ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಶಬ್ದ ಕಾ ಅರ್ಥ ಭೀ ಹಮನೆ ಸುನಾ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೇ ವಿಶ್ವ ಪ್ಲಸ್ ಮಿತ್ರ, ಜೊ ಸಾರಾ ವಿಶ್ವ ಕೆ ಮಿತ್ರ ಹೇ. ಜಬ ಋಷಿ ಕೋ ಸಂಬೋಧಿತ ಕರ್ತಾ ಹೇ ತಭಿ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಾ ಅರ್ಥ ಹೋ ಸಕ್ತಾ ಹೇ. ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಜಾ ಜಬ ಹಮ ಜೈಸೆ ಲೋಗ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನಾಮ ರಖತೆ ಹೇ ತೋ ತಬ ಉಸ್ಕಾ ಸಂಧಿ ವಿಚ್ಛೇದ ಜೊ ಹೇ ವಿಶ್ವ ಪ್ಲಸ್ ಅಮಿತ್ರ ಹೋತಾ ಹೇ. ಇನ್ ಸಬ್ ಬಾತೋ ಕೆ ಪರ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ತೆ ಹುವೆ ಕಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ವೃತ್ತಾಂತ ಬತಾಯಾ ಸೀತಾ ಕಾ ಜನ್ಮ ಕಾ. ಜಬ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ನೇ ಪೂಛಾ ಕಿ ಆಪ್ಕೆ ಯಹಾಂ ಏಕ್ ಅದ್ಭುತ ಏಕ ಧನುಷ್ ಹೇ ಉಸ್ಕೋ ದಿಖಾಯಿಯೇ. ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ನೇ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕೋ ಯೇ ಧನುಷ್ ಕಾ ಇತಿಹಾಸ ಬತಾತೆ ಹುವೆ ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಕಹಾ ಕಿ ಯೇ ವೀರ ಶುಲ್ಕ ಹೇ, ಜೋ ಭೀ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ನಿ ವೀರತಾ ಕಿ ದ್ವಾರಾ ಇಸ್ ಧನುಷ್ ಕೋ ಉಠಾತಾ ಹೇ उस वीरता की बदले में मैं अपनी कन्या को दान दूंगा। और इसके पीछे जो इतिहास हमने देखा कि इस प्रकार सीता जी का जन्म हुआ था भूमि से, और साथ साथ में जब छोटी सी बालिका थी उस समय गेंद खेल रहे थे बालिकाओं के साथ, तो सीता जी का गेंद जो है ऊपर फंस गया एक पेड़ के ऊपर। तब सीता जी भागते भागते अंदर गई और एक बड़ा सा लोहे का पेटी था उसको खोली, उधर का धनुष अपने लेफ्ट हैंड से ऐसा उठा के उस गेंद को नीचे गिरा के फिर वापस जाकर धनुष को रख दिया। और ये दृश्य दशरथ महाराज देखे थे, तब से उनका हृदय घबराहट होने लगा, क्योंकि मेरी पुत्री जो सीता है इतनी शक्तिशाली है कि इस धनुष को अकेले उठा के गई, और ये धनुष जो है अनेकों लोग प्रयास के उसको उठाने के लिए नहीं उठा सकते, इसको 300 लोग लगते हैं इस पेटी को खाली हिलाने मात्र के लिए, और ये सीता बालिका है इतनी शक्तिशाली है, अगर मैं इससे विवाह कराऊंगा तो किससे विवाह कराऊंगा, इसलिए इस प्रकार का शुल्क रखा गया था कन्या शुल्क, अपनी एक वीरता के बदले में, ये धनुष उठाने की वीरता के बदले में ही सीता को दिया जाए। हमने इस घटना को सुना किस प्रकार रामचंद्र अपने गुरु की आज्ञा लेते हुए विश्वामित्र की आज्ञा लेते हुए उधर गए, तो विश्वामित्र ने कहा रामम धनुष पश्या, जरा देख लेना उसको। विश्वामित्र को मालूम है भगवान रामचंद्र के अंदर एक शक्ति ताकत मालूम है, इससे उन्हें नहीं कहा उठाओ, खाली देख लेना बस, जस्ट सी। तब राम वापस प्रणाम कर उन्हें पूछा थोड़ा ये तोड़ू, तो राम ने जैसे उठाया, उठा के रस्सी बांधना था, वो लोहे की रस्सी होती है, वो साधारण चीज नहीं है, उस धनुष को झुका के लोहे की रस्सी को उधर बांधना पड़ता है, जैसे झुका के बांधने गए तो टूट गया। तो राम ऐसे घबराते हुए कि मैं तो कुछ नहीं किया, ऐसे में करने गया तो टूट गया। जब इस प्रकार की टूटी तो पूरा आवाज ऐसा भयानक सा आवाज हुआ, सब लोग एकदम घबरा गए, ऐसा भूकंप लग रहा था, पूरा पहाड़ पटने जैसी आवाज आई। तब दशरथ महाराज जनक महाराज बड़े प्रसन्नता के कहने लगे मेरी पुत्री सीता भी राम को देना चाहता हूँ, लेकिन तुरंत ही आपकी आज्ञा से मैं अपनी सेना को अपने मंत्रियों को भेजूँ दशरथ महाराज को निमंत्रण देने के लिए। दशरथ महाराज को निमंत्रण दिए, दशरथ महाराज भी इन मिथिला से आए हुए मंत्रियों का शतानंद का निवेदन सुन के उधर वशिष्ठ से पूछे, अन्य मंत्रियों से पूछे, अगर उचित समझते हैं आप, अगर समझते हैं कि रामचंद्र का विवाह सीता से हो तो हम शीघ्र ही जल्दी से जाएंगे। सब लोग ने अनुमति लिया। ये वैदिक सभ्यता के विषय अनेकों अनेकों बातों को हम कहें, जब तक वरिष्ठों की आचार्यों की ब्राह्मणों की आशीर्वाद नहीं होता है तब तक कार्य संपन्न होने पर भी आप समझना चाहिए विफल है। इसलिए आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण होता है, अनुमति बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो बड़ों की अनुमति से सभी लोग पहुंचे, राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न, इन चारों का विवाह का तैयारी हो रहा था, कहाँ, जनकपुर में। दशरथ महाराज ने अनेकों अनेकों वृक्षों और गायों को दान दिया। दान देने के बाद वो विचार कर रहे थे उस समय, अनेकों अनेकों मंत्रीगण की उपस्थिति में जनक महाराज और दशरथ महाराज दोनों की वंशावलियों का महिमा का वर्णन गान किया गया था, और वशिष्ठ और विश्वामित्र इन दोनों को जनक महाराज कहते हैं, बहुत अद्भुत बात कहते हैं कि हे वशिष्ठ और विश्वामित्र, आज से हम दोनों का सिंहासन आपका है, जब तक विवाह पूर्ण नहीं होगा तब तक इस महासन आपका है। ऐसा कहते हुए कहा कि अभी से जिस प्रकार अयोध्या दशरथ का है, जनकपुरी भी दशरथ का है, जिस प्रकार जनकपुरी मेरा है उसी प्रकार अयोध्या भी मेरा है, यानी दोनों परिवारों का आज से मिलन हो रहा है, इसलिए आप अभी यज्ञ की तैयारी कीजिए। यज्ञ की तैयारी हुआ, कल हमने वर्णन किया किस प्रकार यज्ञ की तैयारी में चारों कन्याएं बैठी हैं, उधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बाहर खड़े हैं, और इधर वशिष्ठ कहते हैं, वशिष्ठ कहते हैं जनक महाराज से, कन्याओं को तैयार किए हो लेकिन इधर भिक्षा लेने वाले ब्राह्मण को तो बुलाओ, या भिक्षा लेने वाले जो योग्य वर है उनको बुलाओ। तब विश्वामित्र को भेजते हैं, जनक महाराज, उनको मेरी ओर से रिक्वेस्ट करके आप बुलाइए। जनक महाराज के निवेदन पे वशिष्ठ विश्वामित्र दशरथ को और उनके चारों पुत्रों को लेके आते हैं। जब चारों पुत्रों को लेके आए, सबसे पहला जनक महाराज खड़े होते हैं और भगवान रामचंद्र के पास आके ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है रामायण में, उसको उच्चारण करते हैं। इयम सीता मम सुता सहधर्मचरी तवा प्रतीक्षा च येनम भद्रम ते पाणिना ग्रहण्वा पाणिना पाणिम गृह्णाश्वि प्राणिना पाणिना। तो इयम सीता मम सुता, तो कल हमने इसको थोड़ा संक्षिप्त में चर्चा किया। इयम सीता, जब रामचंद्र जी आए ऐसे बहुत छोटे उम्र के, 12 साल के, ज्यादा नहीं है। और आप बोले 12 साल के क्या विवाह होता है भाई, ये जो बचपन में विवाह करना ये वैदिक सभ्यता है। आजकल 25 साल 30 साल तक विवाह नहीं करना ये वैदिक सभ्यता नहीं माना जाती है। कोई सभ्यता नहीं वैदिक, क्या कोई सभ्यता नहीं है। बचपन में विवाह, बाल विवाह को आजकल कानूनी तरीके से या सोशल सामाजिक तरीके से इसको गलत माना गया है, लेकिन बिल्कुल गलत नहीं है, वो एकदम बिल्कुल सही है। क्योंकि जब बचपन में ही दोनों का विवाह होता है, उन दोनों की प्रेम, बीच में प्रेम बचपन से ही एक दूसरे के प्रति रहता है, उस स्त्री का या कन्या का विवाह होने के बाद स्त्री है तो कोई और पुरुष के प्रति उनका मन नहीं जाता है। उसी प्रकार इस पुरुष का भी किसी और के प्रति उनका मन नहीं जाता है। क्यों? बचपन से ही उन दोनों के बीच में प्रेम है या बाल्यावस्था से उन दोनों का प्रेम है। अभी आजकल पता नहीं कितने लोगों से प्रेम हो जाता है, बिगड़ जाता है, बाद में जुड़ते हैं, बाद में कितने लोगों से और प्रेम हो जाता है। तो ये पूरा एक खिचड़ी पक चुका है, पता नहीं क्या कि विवाह का क्या अर्थ है। इसके लिए आजकल नया चीज निकला है कि विवाह करे क्यों, क्या जरूरत है, क्योंकि विवाह होने से पहले सब ठीक चलता है, बाद में जो है सब बिगड़, सब मामला गड़बड़ हो जाता है। इससे अच्छा करें ही ना तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है नहीं? यानी विवाह करने से पहले जब दो लोग मिलते हैं, दोनों के बीच में बहुत प्रेम होता है। ऐसी ही अनेकों लोगों के जीवन में ऐसा वो लोगों ने देखा, उनके मित्रों में जीवन में देखा, जब एक दूसरे से प्रेम करते थे विवाह होने से पहले, बहुत प्रेम था, प्रेम था, आदर था, सब कुछ था। विवाह होने के बाद डाइवोर्स देने सोचते हैं, तब ये लोग सोच के आजकल सोचते रहे, नए लोग सोच रहे कि आजकल की युवक और युवतियां क्या फायदा है विवाह करने की, डाइवोर्स होना ही है ना, इससे अच्छा कि विवाह के बिना हम रह जाए। देखिए विवाह के बिना नहीं रहना ये तो जानवरों की सभ्यता हो गई। देखो कोई भी जानवर की योनि में या जानवर की समाज में विवाह नामक चीज नहीं रहता है, मनुष्यों की समाज में ही रहता है। जब विवाह नामक जो संस्कार है, जब मनुष्य समाज त्याग कर देता है, इसका मतलब है वो जानवर जैसा होने जीने लगे। तो इधर रामचंद्र जी आए और सीता कौन है रामचंद्र को अभी तक नहीं मालूम। वैसे देखा जाए राम सीता तो सनातन पुरुष है, विष्णु लक्ष्मी और विष्णु हैं, और साकेत में नित्य रूप में राम सीता रहते हैं, लेकिन फिर भी जब इधर लीला के दृष्टिकोण से आया तो दशरथ जनक महाराज को दिखाना पड़ा यम सीता मतलब ये सीता है, यम सीता मम सुता। तो जनक महाराज को सीता की ओर इंगित करना पड़ा, क्योंकि राम जो इस सब देख रहे थे मेरी कौन इन चार में से, हु इज माइन, तब उनको दिखाए मेरी सीता, ये यम सीता है। तब राम ने पहली बार ये शब्द सुना सीता, तो सीता का जो अर्थ है अनेकों अर्थ, एक अर्थ ये है कि जो हल होता है ना, हल का जो अग्रभाग होता है उसको सीता कहा जाता है। ये क्या नाम रख दिया अपनी सीता, क्या होता है ये हल का अग्रभाग, ये क्या नाम रखा है? तो तब जनक महाराज ने कहा देखो ये जो सीता है, इनका नाम सीता इसलिए क्योंकि वो भूमि से प्रकट हुई है, और भूमि से प्रकट होने के लिए इस हल का अग्रभाग को इस्तेमाल किया गया था, इसलिए इनका नाम हमने सीता रखा। तब रामचंद्र ने सीता पूछा कि भूमि से उत्पन्न हुई तो ऐसा क्या जरूरी कि मुझे क्यों दे रहे हो, किसी और को दे देते, उर्मिला बैठी है, मांडवी बैठी है, सुत कीर्ति तीनों और कन्या है, वो योग उनको क्यों नहीं अर्पण कर रहे हो? तो तब जनक महाराज ने कहा कि हे राम, जानते हो आप, ये सीता जो है आपके लिए ही प्रकट हुई है, क्योंकि आप जो है इस संसार के हर चीज का एकमात्र मालिक हो, हर चीज आपको ही संबंधित है, इसलिए सीता को आपको स्वीकार करना होगा। तो राम ने कहा अगर इस संसार का हर चीज मेरा है तो सीता को ही क्यों दे रहे हो, बाकी लोगों को भी दे देना चाहिए। तब जनक महाराज ने कहा ऐसा लगता है कि विश्वामित्र के गुरुकुल में आपने उपनिषदों को सीखा नहीं है। तब राम ने कहा नहीं, मैं सारे उपनिषदों को जानता हूं। तब जनक ने कहा कि आप जानते नहीं हो चांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि सत्यम, परम सत्य को सत्य करके संबोधित किया गया है, साती एम, ये तीन शब्दों में सीता जो सूचित कर रही है ती को सूचित करती है। इसका अर्थ क्या है, सा और ता, इन दोनों को जोड़ के अम होता है, जिसके द्वारा ये सूचित किया जा रहा है कि सीता वो चीज है जो सारा संसार को आपके साथ जोड़ती है, यानी सीता आपकी शक्ति है जिसके द्वारा सारा संसार आपका जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति संसार में कोई वस्तु को या कोई व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहता है केवल सीता के द्वारा ही जुड़ सकता है। क्या आपने उपनिषदों में ये बात नहीं सुना? तो भगवान रामचंद्र ने कहा बहुत अच्छी बात है, अच्छा मेरा प्रश्न ये है, तो आप इसको लक्ष्मी कहते हो सीता को, तो ये क्या सबूत है ये लक्ष्मी है करके? तब जनक महाराज ने कहा देखिए इनका जन्म जो है बड़ा दिव्य हुआ है, ऐसे किसी गर्भ से नहीं हुआ है, आपका जन्म भी जैसे बड़ा दिव्य तरीके से हुआ है, खीर खाने से हुआ है। आज तक कभी सुना है खीर खाने से किसी का जन्म हुआ है? आपका भी जन्म दिव्य है, इनका भी जन्म दिव्य है। आज तक आपने सुना है आपने हल चलाते चलाते एक सुंदर बच्ची बालिका जो है पृथ्वी से आई है, इससे पता लगता है उनका जन्म दिव्य है। अच्छा राम ने कहा कि पृथ्वी से आने से दिव्य होता है क्या, लक्ष्मी है तो ऊपर से क्यों नहीं टपकी? तो ऐसा हास्यात्मक संवाद है। ऐसे प्रथा है कि जब विवाह होता है, विवाह में इन दोनों परिवारों के बीच में संबंध को और गहरा बनाने के लिए उनके बीच में अगर मान लो कि मन में कुछ भारी बातें अगर हो, उसको हल्का करने के लिए कुछ हास्यात्मक खेल होता है। पता नहीं दक्षिण भारत उत्तर भारत में होता है कि नहीं, दक्षिण भारत में ऐसा अभी भी प्रथा है, कुछ वो परिवार वार ये परिवार वाले कुछ ऐसे कुछ खेल खेलते हैं या कुछ आश्चर्यजनक बातें कहते हैं जिसके द्वारा उनके मन में अगर कहीं कुछ हो, अरे ये ये लड़की वालों ने हमको कमी किया और लड़के वालों ने इस प्रकार कमी किया, अगर कुछ मन में बातें वो सब निकल जाए, इस प्रकार की अभी प्रथा चल रही है। तो इस प्रथा के अनुसार इधर चर्चा इन दोनों के बीच में हो रहा है। वैसे तो चर्चा हुआ कि नहीं वाल्मीकि रामायण लिखा नहीं है, लेकिन आचार्यगण ने उन सबको इस प्रकार वर्णन किया है, तो सब लोग सुन रहे थे इस प्रकार वर्णन, ताकि वो हल्का हो जाए माहौल, क्योंकि बड़ा गंभीर माहौल होता है उसमें, इतना कार्य जो है वो सरलता से सहजता से नहीं होता है। जब माहौल जो है एकदम बिल्कुल सरल होता है या हास्यात्मक होता है, उसमें हर चीज सहज और सरल होता है। तो इस तरीके से दोनों के बीच संवाद हुआ, संवाद होते होते तब जनक ने कहा आप जानते नहीं हो कि ये लक्ष्मी है, कौन सी लक्ष्मी जानते हो, ये श्री लक्ष्मी होने पर भी ये भू लक्ष्मी का स्वभाव है, भूमि देवी के साथ आपका नित्य संबंध होने के नाते जब तक भू देवी प्रदान नहीं करती है तब तक आप श्री देवी को भी स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि आपका नित्य संबंध आपका चरण जो है हमेशा भू देवी के संस्पर्श में रहता है। भले ही आप श्री देवी या नीला देवी, लक्ष्मियों का वैसे अनेकों विस्तार है लेकिन मुख्य तीन है श्री भू नीला, तो ये श्री देवी भी आप स्वीकार करोगे तो भूदेवी की अनुमति से प्राप्त करोगे, इससे भूदेवी ने आपको प्रदान किया इसलिए आपको स्वीकार करना होगा। अच्छा ठीक है, आपने तो सीता करके लक्ष्मी करके आप बता रहे हो, तो क्या गारंटी है मैं विष्णु हूं? तब जनक महाराज कहने लगे आपका ये जो स्वरूप है, जनक महाराज राम का स्वरूप का वर्णन करते हैं, आपका ये सौशील्यता है, आपका ये जो गुण है ये कोई साधारण जीव में हो ही नहीं सकता। और आपका जन्म इस प्रकार का दिव्य है, आपका पराक्रम देखिए, ये सब बात तो छोड़िए, आपने ये धनुष को उठाया, ये धनुष को उठाया, आज तक कोई जी ने सोचा भी नहीं उठाने के लिए, अगर सोचा भी तो आके उठाने के लिए प्रयास किया, कोई उठा नहीं पाया, यही सबूत है आप विष्णु हैं। तब जनक महाराज कहते हैं, दनवो प्रणवो धनुहु, प्रणवो धनुहु, ये धनुष किसी और का नहीं, शिव जी का है, और शिव जी का धनुष जो है ओमकार स्वरूप है, और ओमकार स्वरूप का ये धनुष आपके सामने ही झुका, किसी के सामने नहीं झुका, इससे पता लगता है कि आपका नाम ओमकार है। कल आपको इस बात को बताई तो आपको याद है तो नमः हम बोलते हैं ना, इसका नाम है। नाम का अर्थ क्या है? वो शब्द जिसके सामने जाके झुकता है उसको नाम कहा जाता है। अभी ओमकार धनुष का रूप में आपके सामने झुका, मतलब ओम आपके सामने झुका, इसका अर्थ क्या है? ओम आपका नाम है, यानी विष्णु का नाम है। प्रणव सर्वे देश शब्द का शब्द के पुरुषम ऋषु, जैसे भगवान भगवता में बात को कहते हैं, तो ये सूचित करता विष्णु हो ये लक्ष्मी है। तब भगवान रामचंद्र ने कहा, तो विष्णु और लक्ष्मी को पहले ही शादी हो चुका है, नया शादी क्यों कर रहे हो आप? नया नया क्यों है, नया इस प्रकार की क्यों वाह करा रहे हो? तो जनक महाराज ने कहा, अभी और आप मत सताओ, ये आपकी जो लीला है अपार है, मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए मम सुता। जनक महाराज जी बड़े पटु है, उन्होंने कहा कि मम सुता यम सीता मम सुता कहा। अब देखिए ये श्लोक का अर्थ में मम सुता शब्द आता है, यम सीता मम सुता, यम सीता मम सुता मतलब क्या, मेरी पुत्री है। अच्छा लक्ष्मी है, आप साक्षात विष्णु हो नारायण हो, होने पर भी ये भगवान आप समझो मेरी पुत्री रूप में प्रकट हुई है। तो राम ने पूछा, अरे आपने अभी कहा कि पृथ्वी ने जन्म दिया और आप कहते हो मेरी पुत्री, ये कैसे है? जनक महाराज ने कहा, मुझे प्राप्त हुई है, आप शास्त्र नहीं जानते हो, जो व्यक्ति पालन करता है किस बच्चे को भी, उस बच्चे का पिता या अगर माँ होती हो माँ बन जाती है, जन्म देने से ही बच्चा नहीं होता है, अगर मानने से भी किसी बच्चे को अपने पुत्र मानने से वो पुत्र हो जाता है, या पुत्री मानने से पुत्री हो जाती है, हमने देखा है। तब रामचंद्र ने कहा, ठीक है अभी दूसरी बार विवाह कराना चाहते हो उनका? हाँ। तब जनक महाराज कहा, सहधर्मचरी तवा, देखिए ये हमारी प्रसन्नता के लिए, मेरी शुद्धिकरण के लिए मैं ये कन्या का दान कर रहा हूं। तुमने कहा सहधर्मचरी, ये शब्द के वर्णन कहा कि ये आपकी धर्मचरी, सह ऐसा नहीं कि अभी होने वाली है, अनेकों अनेकों जन्मों से आपकी ही है। लेकिन जनक महाराज जी बहुत गहरा सिद्धांतिक बात कहते इधर कहते हैं कि ये सारा जो लीला हो रही है ना, ये मेरी आनंद के लिए, मेरी समृद्धि के लिए, मेरी हित के लिए हो रही है, इसलिए हे भगवान हे राम, मेरी हाथ से ये लक्ष्मी जो नामक सीता है, जो मम सुता मेरी पुत्री के रूप में है, उसको आप स्वीकार करो। सहज धर्मचरी तवा, ये आपकी है लेकिन अभी तक मेरी पुत्री के रूप में मैं उसको संरक्षण करके रखा हूं, इसलिए प्रतीच्छा एतद् बद्रंते पाणिम गृहणीष्व पाणिना, आपकी हाथ से सीता की हाथ को ग्रहण करो। सीता कौन है? लक्ष्मी है। लक्ष्मी हमेशा रामचंद्र की है, हमेशा नारायण की, वो किसी की हो ही नहीं सकती है, लेकिन वो आती है किसके हाथ में आती है? भक्तों के हाथ में आती है, जैसे जनक महाराज के हाथ में पुत्री के रूप में आई लक्ष्मी। वो लक्ष्मी का एकमात्र गंतव्य है क्या है? राम से मिलाना। इसलिए अपने पास में जो लक्ष्मी है उसको राम के साथ मिलाना, यही रामायण है, यही रामायण है। इधर ने कहा पाणिम गृह्णाश्विनी गृह्णांशी पाणिना, आप इस अपने हाथ से लक्ष्मी जी को स्वीकार करो। वैसे इस श्लोक का तीन व्याख्या है। एक व्याख्या में जिसमें राम को विष्णु के रूप में, भगवान के रूप में दिखा गया है, सीता को एक लक्ष्मी के रूप में वर्णन किया गया है। दूसरा और एक व्याख्या में एक आचार्य कहते हैं कि यम सीता मम सुता सहधर्म चरितवा, यम सीता देखो आप आए हो, एक ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारी का ही कर्तव्य बनता है भिक्षा मांगना। अस्तित्व में ये विवाह होने से पहले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चारों का यज्ञोपवीत हुआ था। वैसे अलग अलग कुलों में अलग अलग प्रकार की संप्रदाय पालन करते हैं। कभी श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल के लोग रहते हैं, उसमें 7 या 6 या 7 साल की उम्र में यज्ञोपवीत करा के यज्ञ सीखने के लिए भेज देते हैं। और कहीं कुक्षत्रिय कुलों में यज्ञोपवीत संस्कार देर में किया जाता है, यानी विवाह होने से 2-3 दिन पहले करते हैं कुछ क्षत्रिय और कुछ वैश्य परिवारों में, क्योंकि वैश्य परिवार में भी यज्ञोपवीत होना जरूरी है। आजकल तो संस्कार कोई पालन नहीं कर रहा है, वो तो अलग बात है, लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार जब तक यज्ञोपवीत नहीं होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में, तब तक उनको विवाह करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि विवाह उसी व्यक्ति को वही व्यक्ति कर सकता है जो ब्रह्मचारी है। जब ब्रह्मचारी हुए बिना विवाह में दान या उनको कन्या को दान के रूप में स्वीकार करने का अधिकार नहीं है। तो आजकल सोचते हैं लोग जो है अभी हम ब्रह्मचारी नहीं बन सकते इसलिए विवाह करेंगे, ये तो कुछ विचित्र बात है। वैदिक थॉट के या वैदिक विचार के ठीक विरुद्ध बात है। कहीं एक जगह एक लड़का ने मेरे से पूछा, प्रभु जी मैं क्या करूं, मेरे मन में ऐसा विचार आया मैं ब्रह्मचारी नहीं बन सकता हूं इसलिए मैं विवाह करना चाहता हूं। मैंने कहा ब्रह्मचारियों का अधिकार है विवाह करने के, पहले आप ब्रह्मचारी बनो बाद में विवाह करने की सोचो। अगर ब्रह्मचारी के बिना, अगर आप ब्रह्मचारी पालन किए बिना विवाह करने के लिए सोचोगे, ना ब्रह्मचारी रहोगे ना गृहस्थ रहोगे। तो आजकल जो है बैचलर को ब्रह्मचारी बोलते हैं, बैचलर होना अलग होता है ब्रह्मचारी, कुंवारा और ब्रह्मचारी में बहुत अंतर होता है। कुंवारा जो है वो इसलिए कुंवारा, इनको शादी नहीं हो रहा इसलिए क्या करें, कोई मिल नहीं रहा है, उसको थोड़ी ना ब्रह्मचारी बोला जाता है, वो कुंवारा है, वो तो उसका कोई इंद्रिया नियंत्रण में नहीं है। अस्तित्व में जिसका इंद्रिया नियंत्रण है, इंद्रियों को नियंत्रण करने का सीखा है, वही व्यक्ति जो है वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। ये आजकल नया एक प्रथा चालू हुआ है इस्कॉन में, इस्कॉन यूथ फॉर्म में हम बड़ा प्रचार करते हैं युवकों को। युवक लोग बोलते हैं प्रभु जी आप कैसे ब्रह्मचारी नहीं बन सकते इसलिए हम गृहस्थ बनना चाहते हैं। मैंने क्या गृहस्थ आश्रम कचरा चीज है क्या, हाँ वो तो सुपीरियर चीज है, ब्रह्मचारी से ऊपर वाला चीज है। तो अगर आप ब्रह्मचारी भी नहीं हो सकते तो गृहस्थ हो ही नहीं सकते, इट इज इम्पॉसिबल। पहले ब्रह्मचारी बनो बाद में जो आप गृहस्थ बनना है तो बन सकते हो। तो ब्रह्मचारी बिना कोई गृहस्थ नहीं बन सकता है, इट्स ए फैक्ट। तो इनका यज्ञों में संस्कार हुआ, तब ये श्लोक का दूसरा अर्थ के अनुसार दशरथ जनक महाराज इयम सीता मम सुता कहते हैं। देखिए वैदिक सभ्यता में मेरी पुत्री है लेकिन मैं आपको दान दे रहा हूं, आज से ये पुत्री मेरी नहीं है। सहा धर्मचरी, आपकी धार्मिक कार्यकलापों में सहयोग करेगी, आपकी धार्मिक कार्यक्रम सहयोग करेगी। मैं आपको देख रहा हूं आप इतने पक्का ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किए हो, आप शास्त्रों को जानते हो, आप शूर हो वीर हो, आपके साथ आपके पास इतना सामर्थ्य है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत प्रिय है, मैं अपने प्रिय जो पुत्री है आपके हाथ में सौंप रहा हूं, इसको अच्छा देखभाल कीजिए। और ये बात रखिए, याद रखिएगा, मैं ये दान आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपकी धार्मिक कार्यकलापों में ये आपकी सेवा करेगी। देखिए विवाह संस्कार के पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, ये शादी नहीं है, ये मैरिज नहीं है। आपको कल कहा था इस बात को, जो शादी करता है वो पूरा जीवन गम में बिताता है, मौज के बाद क्या होता है, गम होता है, और जो मैरिज करता है वो डाइवोर्स में जाता है। तो आपके ऊपर है, आपको शादी करना है शादी करो, मैरिज करना तो मैरिज करो, लेकिन वास्तविकता में करना चाहिए क्या है? विवाह। एक संस्कार है हमारे शुद्धिकरण के लिए है। अगर कोई सोचे मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह कर रहा हूं, वो सबसे बड़ा गलतफहमी है। आजकल सबके सर्वे भूत चढ़ गया है, इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह किया जा रहा है। विवाह जो इंद्रिय तृप्ति के लिए है वो नहीं है, वे संस्कार है, वो शुद्धिकरण करने का संस्कार है। यम सीता मम सुता सहधर्म चरी सहा, इसलिए आप, मैं अपनी सीता अपनी पुत्री का हाथ को आपके हाथ में रख रहा हूं, आज से आप उनके रक्षक हो। इस श्लोक का साधारण अर्थ ही सरल रूप में बताया। कभी और एक हास्यात्मक अर्थ है, हास्यात्मक नहीं बल्कि एक भिक्षा मांगने वाला आपके घर में आया समझ लीजिए, तो भिक्षा जो देने वाला होता है ना, भिक्षा देने वाला भिक्षा मांगने वालों से याचना करता है। क्या याचना करता है? मेरी भिक्षा कृपा करके लो। इधर भगवान रामचंद्र आए बहुत भिक्षां दे ही करके, एक ब्रह्मचारी है, अधिकार है, भिक्षा दीजिए आपकी कन्या को, मैं वटु हूं आया हूं। तब इयम सीता मम सुता, इयम शब्द के द्वारा ये सोचिए, ये जो मेरी सीता है, मेरी सुता मेरी पुत्री है, और सहधर्मचरी तवा, आपके धार्मिक कार्यकलापों में उनको एंगेज करके उनको लगा के मेरा उद्धार कीजिए। अभी ये वैदिक संस्कृति में एक बहुत सूक्ष्म बात है, जैसे किसी घर में पुत्री जन्म लेती है, सबसे पहले पिता को एक चिंता होती है, किसके साथ इसका विवाह कराऊं। जो पिता इस चिंता को अपने सर में नहीं लेता है, वास्तव में वो पिता ही नहीं माना जाता है। सबसे पहला ये बात मन में आना चाहिए, किसके साथ इसका विवाह कराऊं। सबसे बड़ा जिम्मेदारी पिता का अपने पुत्री को योग्य वर को ढूंढ लाना। आजकल तो पिता सोचते मेरी हमारी बेटी हमारे पास रहेगी, हम उसको पढ़ लिख के बड़ा बनाएंगे, वो कराएंगे ये कराएंगे, ये सब जो चीज जो है हमारी संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है। अपनी बेटी को अच्छे संस्कार देके एक योग्य पुत्र को, एक योग्य वर को ढूंढ के उनको प्रदान करना एकमात्र कर्तव्य है। उनको वो ये पढ़ाना वो पढ़ाना, उसका कोई ये सब चीज की कोई जरूरत नहीं है। इतना ये सब आधुनिक शिक्षण में डाल के और बिगाड़ा जा रहा है। एक ही कर्तव्य पिता का, एक अच्छे व्यक्ति का, अच्छे लड़के को देख के उसको विवाह कराना। ये सब वैदिक सभ्यता से जितने दूर जा रहे हैं उतने सारी समस्याएं आ रही है। तो एक भिक्षुक के रूप में भगवान आए और जनक महाराज उस भिक्षुक से याचना करते हैं। क्या वैदिक सभ्यता देखिए, याचना करते हैं, देखो मेरी पुत्री है, ये बहुत प्रेम से मैंने उसको पाला है, और मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपको मैं दान दे रहा हूं इस पुत्री को, सीता को, आपकी धार्मिक कार्यकलापों में इनको लगाइए, और इस सीता की हाथ को आपके हाथ में रख रहा हूं, कभी मत छोड़ना इनको, चाहे कुछ गलती भी हो जाए ना, ये समझना ये हमारी गलती है। देखिए क्या है, क्या क्या भाव है। एक आचार्य इस भाव को लिखते हैं कि जनक महाराज के हृदय में इस प्रकार की भाव थी, अगर सीता कुछ गलती करे ना, आप ये समझो हमारी गलती है, उनको माफ करना। और जो दान देने वाला होता है उसकी गलती को ही माफ किया जाता है। मैं दान दिया हूं आपको, और सीता की जो गलतियां हैं, अगर कोई कुछ कर भी देगी या कुछ गलतियां कर भी देगी, उनको माफ करना, उनको देखभाल करना। इस प्रकार की तीन भावों को इस श्लोक में व्यक्त किया जा रहा है। और ये श्लोक उच्चारण करने के बाद तुरंत बहुत वैसे तो अनेकों अनेकों बातें कहा जा सकता है श्लोक के ऊपर, लेकिन हमारे पास समय नहीं, हमको आगे बढ़ना है। तो जैसे ये पाणि ग्रहण हुआ, साधु साधु इति देवानाम ऋषीनाम देवतात्मा तदा देव दुंदुभि निर्देशो पुष्प वर्षम महान भूत, पुष्प वृष्टि होने लगा। देवता लोग आए और ऋषिगण आए, सभी लोग वदताम तदा, सब लोग बोलने लगे। क्या बोलने लगे? साधु साधु, साधु मतलब बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। उसके बाद ಏವಂ ದತ್ವಾ ಸುತಾಂ ಸೀತಾಂ ಮಂತ್ರಂ ಉದಕ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂ. ಮಂತ್ರಂ ಉದಕ ಪುರಸ್ಕೃತಾಂ, ಜಬ ಭೀ ಕೋಯಿ ದಾನ ದಿಯಾ ಜಾತಾ ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಂತ್ರೋಂ ಕೋ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ಕುಛ ಶುಭ ಮಂತ್ರೋಂ ಕೋ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ಔರ್ ಜಲ್ ಕೋ ಭೀ ಡಾಲ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಜಲ್ ಔರ್ ಮಂತ್ರ ಇನ್ ದೋನೋ ಕಾ ಮಿಶ್ರಣ ಸೇ ಐಸಾ ನೀ ಕಿ ದಾನ ದಿಯೆ ಚಲೋ ಇಧರ ಆಓ ಲೇಕೆ ಜಾಓ. ಈ ದಾನ ದೇನೆ ಕಾ ತರೀಕಾ ನೀ ಹೈ. ಆಜಕಲ್ ತೋ ಕೋಯಿ ಸಭ್ಯತಾ ನೀ ರಹಾ. ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಇತ್ಯಾದಿ ಪಡ್ನೆ ಸೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವೇದಾಂತ ತೋ ಬಡಿ ಚೀಜ್ ಹೈ, ಕಮ್ ಸೇ ಕಮ್ ಸಭ್ಯತಾ ತೋ ಮಾಲೂಮ್ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಅಬ್ರವೀತ್ ಜನಕೋ ರಾಜ ಹರ್ಷಣ ಅಭೀಪ ರಿಪ್ಲುತ. ಜನಕ ರಾಜ ಬಡೇ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಓ ಹರ್ಷಿತ್ ಹೋನೆ ಲಗೆ, ಹರ್ಷಿತ್ ಹೋಗಿ ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಹನೆ ಲಗೆ. ಕ್ಯಾ ಕರ್ನೆ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ನೆ ಲಗೆ. ಔರ್ ರಾಮ ಕಾ ತೋ ಹೋಗಿ ಅಭಿ, ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ ನೇ ವಾಪಸ್ ಬುಲಾಯ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಗಚ್ಚ ಭದ್ರಂತೆ, ರಾಮ ಕಾ ಹೋಗಿ ನಾ ಸೀತಾ ಕೋ ಲಗಾ ಆಪ್ ಬೇಠೋ. ಔರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋ ಲಾಯ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಆಗಚ್ಚ ಆಓ ಭದ್ರಂತೆ ಭದ್ರ ಹೋ. ಊರ್ಮಿಳಾಂ ಉದಯಾಮಯ ಉದ್ಯತಾಮ ಉದ್ಯತಾಮಯ ದೇಖೋ ಊರ್ಮಿಳಾ ಹೇ ಏನು ಕೊಲು. ಪ್ರತಿಚ್ಛ ಪಾಣಿಂ ಗೃಹೀಶ್ವರಾಂ ಮಾ ಭೂತ ಕಲಯಸ್ವ ಅರ್ಥಯ. ಮೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೇ ಊರ್ಮಿಳಾ ಕೋ ಲೀಜಿಯೇ. ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಭರತ್ ಕೋ ಬುಲಾಯ. ತದೇಮಂ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಜನಕೋ ಭರತಶ್ಚ ಅಭ್ಯಭಾಷತ. ಹೇ ಭರತ್ ಆವ್ ಪ್ರಾಣಿಂ ಗೃಹಣ್ಣು ಮಾಂಡವ್ಯ, ಮಾಂಡವಿ ಮಾಂಡವಿ ಜೊ ಹೇ ಉನ್ಕೋ ದಿಯಾ ಭರತ್ ಭರತ್ ಕೋ. ಔರ್ ಶತ್ರುಘ್ನ ಕೋ ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ. ಯೇ ದೋನೋ ಮಾಂಡವಿಯ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ ಜೋ ಹೇ ವೋ ಜನಕ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಜೊ ಭಾಯಿ ಹೇ ಉನ್ಕಿ ಪುತ್ರಿಯಾ ಹೇ. ಯಾನೆ ದೂಸರೆ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭರತ್ ಶತ್ರುಘ್ನ ಉನ್ಕಾ ವಿವಾಹ ಇನ್ ಚಾರೋನ್ ಸಿವಾ ಸೀತಾ ಊರ್ಮಿಳಾ ಮಾಂಡವಿ ಓ ಶ್ರುತಕೀರ್ತಿ. ವಿವಾಹ ಹೋಗ್ಯಾ ಹೋನೆ ಕೆ ಬಾದ ಬಡೇ ಆನಂದ ಕೆ ಸಾಥ್ ಏಕ್ ದಿನ ರುಕೆ ಉದರ್ ಔರ್ ಸಭಿ ಲೋಗ ನಿಕಲ್ ಪಡೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಉದರ್ ಸೆ ಉತ್ತರ ಕಿ ಓರ್ ನಿಕಲ್ ಪಡೆ. ಔರ್ ಇಸ್ಕೆ ಬಾದ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಕಾ ಕಹೀ ಜಿಕ್ರ ನಹೀ ಆತಾ ಹೈ. ಜಬ್ ರಾಸ್ತೆ ಮೇ ನಿಕಲ್ ಕೆ ಆ ರಹೆ ಥೆ ಉಸ್ ಸಮಯ ಅಚಾನಕ್ ಸೆ ಗರ್ಜನಾ ಹುವಾ ಕಿಸ್ಕಾ, ಪರಶುರಾಮ್. ಪರಶುರಾಮ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಭೇಟ್ ಹುವಾ. ಪರಶುರಾಮ್ ಏಕದಮ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಕ್ರೋಧಿತ ಹೋಗಿ, ಕೌನ್ ಹೇ ವೋ ಜೋ ಮೇರೆ ಗುರು ಶಿವಜಿ ಕಾ ಧನುಷ್ ಕೋ ತೋಡಾ. ಜಬ್ ಇಸ್ಕಾ ಇತ್ನಾ ಭಯಾನಕ ಸಾ ಆವಾಜ್ ಆಯಾ ತೋ ಪತಾ ಲಗಾ ಕಿ ರಾಮ್ ನೇ ಕಿಯಾ. ತೋ ಪರಶುರಾಮ್ ಬಡೇ ಕ್ರೋಧಿತ ಹೋಕೆ ರಾಮ್ ಕೋ ಸಂಬೋಧಿತ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ತುಮಾರ ಯೇ ಹಿಮ್ಮತ್ ವೋ ಹಿಮ್ಮತ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಹುತ್ ಕ್ರೋಧಿತ ಹೋಕೆ ಪರಶುರಾಮ್ ಕೋ ರಾಮ್ ಕೋ ಇತ್ನಾ ಕೈಸಾ ಕಹತೆ ಹೋ, ಮೇರೆ ಸೇ ಯುದ್ಧ ಕರೋ. ತೋ ರಾಮ್ ಏಕದಮ್ ಶಾಂತ ಹೈ. ತೋ ಪರಶುರಾಮ್ ನೇ ಕಹಾ ರಾಮ್ ಕೋ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೋ ಶಾಂತ ಕಿಯಾ ರಾಮ್ ನೇ. ಔರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ನೇ ಕಹಾ ಅಗರ್ ತುಮಾರೇ ಪಾಸ್ ಇತನಾ ಶಕ್ತಿ ಹೇ ವಿಶ್ವ ಧನುಷ್ ಕೋ ತೋಡ್ ಕೆ ದಿಖಾವು, ಸಾರಂಗ್ ಕೋ ತೋಡ್ ಕೆ ದಿಖಾವು. ತಬ್ ರಾಮ್ ನೇ ಕಹಾ ಠೀಕ್ ಹೈ. ತೋ ಪರಶುರಾಮ್ ಜೊ ಹೇ ಆಂಖ ಬಂದ್ ಕಿಯೇ ಔರ್ ಹಾಥ್ ಮೇ ಬುಲಾ ರಹೆ ಸಾರಂಗ್ ಕೋ, ಬುಲಾ ರಹೆ ಸಾರಂಗ್ ಸಾರಂಗ್ ಆಓ. ತೋ ಸಾರಂಗ್ ಆ ಹೀ ನೀ ರಹಾ ಹೈ. ತೋ ಆಂಖ ಖೋಲ್ ಕೆ ದೇಖ್ತೇ ಉನ್ಕೆ ಹಾಥ್ ಮೇ ಕೋಯಿ ಸಾರಂಗ್ ನೀ ಹೈ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಹಾಥ್ ಮೇ ವೋ ಸಾರಂಗ್ ದಿಖಾಯ್ ಪಡಾ. ತೋ ಪರಶುರಾಮ್ ದೇಖ್ ಕೆ ಸಮಝ್ ಗಯೇ ಮೇ ಶಕ್ತಿ ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಮಾತ್ರ ಹೂ, ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ನಹೀ ಹೂ. ತೋ ಸಮಯ ಪರಶುರಾಮ್ ಜೀ ಕೆ ಅಂದರ್ ಜೊ ಆವೇಶ ಥಾ ರಾಮಚಂದ್ರ ನೇ ಅಪ್ನೆ ಅಪ್ನಾ ಲಿ ಕರ್ ಲಿಯಾ. ಪರಶುರಾಮ್ ಜೀ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕರ್ಕೆ ನಿಕಲ್ ಪಡೆ. ಸೀತಾ ಜೀ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮೇ ವಾಪಸ್ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಮೇ ಬಡೇ ಆನಂದ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಉನ್ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಹುವಾ. ಸಾರೇ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕೆ ಪ್ರಜಾ ಇತ್ನೆ ಸುಖ ಹೈ, ಪೂರಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್. ಬಾಲಕಾಂಡ ಕಾ ಜೊ ಎಂಡಿಂಗ್ ಬಡೇ ಹ್ಯಾಪಿ ತರಿಕೆ ಸೇ ಹೋತಾ ಹೈ. ಔರ್ ಪೂರಾ ಜೀವನ್ ಕೈಸಾ ಹೈ ಅಯೋಧ್ಯಾ ವಾಸಿಯೋ ಕಾ, ಅಯೋಧ್ಯಾ ವಾಸಿಯೋ ಕಾ ಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಸೀತಾ ರಾಮ್ ಕಾ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ನಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆ ಸಾಥ್ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ನಾ. ರೋಜ್ ದರ್ಶನ್ ಕರ್ನೆಗೆ ಜಾತೆ ಥೆ, ಉನ್ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಲಗ್ ಮಂದಿರ್ ಕಿ ಅವಶ್ಯಕತಾ ನಹೀ ಥಿ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರಾಜಮಹಲ್ ಮೇ ಜಾವ್ ರಾಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹನುಮಾನ್ ತೋ ಸಮಯ ನಹೀ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ರಾಮ್ ಸೀತಾ ರಾಮ್ ಕಾ ದರ್ಶನ್ ಕರೋ. ಔರ್ ಸೀತಾ ರಾಮ್ ಕೆ ಹೃದಯ ಮೇ ಜೊ ಏಕ್ ದೂಸರೆ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರೇಮ್ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ದರ್ಶನ್ ಕರಿಯೆ, ಬಡೇ ಆನಂದ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಅಪ್ನೆ ಕಾಮ್ ಕಾಜ್ ಮೇ ಲಗ್ತೆ ಥೆ. ಇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಮೇ ಹರ್ಷ ಔರ್ ಆನಂದ್ ಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಚಲ್ ರಹಾ ಹೈ. ಅಭಿ ಬಾಲಕಾಂಡ ಕೆ ಬಾದ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕಾಂಡ ಶುರು ಹೋತಾ ಹೈ. ಬಾಲಕಾಂಡ ಜೊ ಹೈ ಯಜ್ಞ ಕಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾಂಡ ಮೇನೆ ಕಹಾ. ತೀನ್ ಯಜ್ಞ ಹೈ, ಜನ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಯಜ್ಞ ಜನ್ಮ ಸೇ ಹುವಾ, ಬೀಚ್ ಮೇ ಯಜ್ಞ ಕೋ ರಕ್ಷಾ ಕಿಯಾ, ಯಜ್ಞ ಮೇ ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಸೀತಾ ಕೋ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಿಯಾ, ಯಾನಿ ಹಮಕೋ ಜೀವೋ ಕೋ ಭಗವಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ತೆ ಹೈ, ಯೇ ಮಹಾಯಜ್ಞ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ತೀನೋ ಕಾ ಯಜ್ಞ ಕೆ ಬೀಚ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಯೇ ಹೈ, ಜಬ್ ಹಮ್ यज्ञ को प्रारंभ करते हैं, यानी भगवान का क्या कर रहे हैं, भगवान का निमंत्रण दे रहे हैं, भगवान का प्राकट्य हो रहा है। जब भगवान का प्राकट्य हुआ और यज्ञ के कार्य में भगवान के प्रति शरणागति यज्ञ है या उनके और अग्रसर होंगे तो भगवान हमको रक्षा करेंगे, जो यज्ञ करता उसको रक्षा करेंगे। करते करते हम परम सिद्धि को जब प्राप्त करते हैं उस समय भगवान हमको अपना मान लेते हैं। ये तीन स्टेप है, दीज आर थ्री प्रोसेसेस, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। सरल भाषा में कहा जाए गौड़ीय सिद्धांत के अनुसार संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। जब यज्ञ करोगे तब समझ में आएगा मैं जीव का, मैं कौन हूं, भगवान का दास हूं। जब यज्ञ की विधि को पालन करोगे भगवान आके स्वयं रक्षा करेंगे, ये अभिधेय है, हर कदम में रक्षा करेंगे शरणागति के। रक्षा करते करते हम इस विधेय में सिद्धि को जो प्राप्त करेंगे भगवान हमको आलिंगन करेंगे, जैसे राम ने सीता को आलिंगन किया। ये पूरा बालकांड हो गया। बालकांड होने के बाद से कुछ एक आचार्य कहते हैं इधर समाप्त होना चाहिए था रामायण, इधर समाप्त होने जाना चाहिए था, अभी मंत्र का बात मत करो। कौन सहन कर सकता है इस बात को, इतना आनंद में है पूरा अयोध्या, क्यों बाकी शुरू हुआ, होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें, रावण को कौन मारेगा। तो ऐसा एक 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 शब्द में उठाया गया है कि होना चाहिए लेकिन हाँ रावणम किम वदम, कौन कौन वध, कौन वध कर सकता है उसको। तो रावण का वध होना है इसलिए रामायण आगे बढ़ा। इसलिए सुमंत्रा जो खेल खेली है ना, कैकेयी ने जो वचन कहा ना, वो उसके पीछे कुछ भगवान का उद्देश्य है। नहीं तो हर चीज हैप्पी एंडिंग में होता है। जैसे पहले मैं आपको कहा था कल भी, वाक एक काव्य होता है, उस काव्य का जो एंडिंग होता है वो मधुरिमा से या माधुरी से एंड होना चाहिए। कोई भी वहां वाक्य कहते हो, किसी को डांटते भी हो ना, लास्ट शब्द मधुर शब्द बोलो। ऐसा नहीं कि किसी को आपने बहुत स्तुति किया, लास्ट में आपने अगर कुछ अपशब्द बोल दिया, गलत बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने बहुत फिस्ट खिलाया, बहुत स्वादिष्ट आइटम, लास्ट में उसके मुंह में करेरी बड़ा डाल दिया, तो बाद में कोई पूछा कैसा था, पता नहीं आप बहुत करवा था, है कि नहीं। भले ही आपने बहुत सारा चीजें खिलाया, एक में नमक नहीं था इसके अंदर, वो था किसके, वो बहुत कैसे भी करके खा लिया, लास्ट में कोई मिश्री दही या रसगुल्ला खिला दिया, तो बाद में पूछा कैसा था, हाँ बढ़िया था, अच्छा था, ठीक है ना। अभी ये हो जाना चाहिए बालकांड में, सीता तो प्रियतया रामस्य हृदय, उन दोनों के बीच में संवाद नहीं, राम बैठे सीता बैठे, राम के हृदय में एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, उनका हृदय की धड़कन होने मात्र से उधर सीता को पता लग जाता है, उस भाव के अनुसार सीता जी कुछ भाव को व्यक्त करती है हृदय, और एक दूसरे को देख के प्रेम का वर्धन हो रहा है। ये दृश्य से रामायण समाप्त होना चाहिए, लेकिन रावण को वध करना बाकी है, इसलिए मंत्र आई। आपको पहले कहा था अयोध्या कांड का पहला जो अध्याय है उसमें भगवान रामचंद्र की दिव्य गुणों को वर्णन किया। अयोध्या के जो दशरथ के महल के जितने भी अनुचर है उनके या मंत्रीगण है, तो बात यही था, संक्षिप्त में पहले कहा गया इसलिए मैं उसको लंबा चौड़ा चर्चा नहीं करूंगा। दशरथ महाराज विचार किया राम को सिंहासन बिठाना चाहिए। क्यों विचार किया उन्होंने, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न दोनों अभी नहीं है। भरत के मामा के घर में भरत गया, और जहां भरत जाता है शत्रुघ्न जाते हैं, शत्रुघ्नो नित्र शत्रुघ्नो बिना बोले वो पहुंच के उनके साथ में, क्योंकि भरत के बिना शत्रुघ्न एक मिनट भी नहीं रह सकता। तब दशरथ ने सोचा उचित समय है, ये नहीं है, और मैंने वचन दिया कैकेयी को, कैकेयी के पुत्र को भरत को राजा बनाऊंगा, ये बात किसी को नहीं मालूम, मुझे मालूम है, कैकेयी को मालूम है, और कैकेयी उनके पिता को मालूम है, और इधर भरत नहीं है, मैं क्या करूंगा, अभी एक सभा बुलाऊंगा, इस सभा में मैं सबकी सहमति के साथ घोषणा कर दूंगा राम को भगवान राज्य देना है। अगर ऐसी घोषणा हो जाएगी, राजा का धर्म होता है सब प्रजा का सहमति लेके वो एक निर्णय लेना। पहले जमाने में ये डेमोक्रेसी नहीं चलता था, ऑटोक्रेसी चलता था, लेकिन किस प्रकार का ऑटोक्रेसी था? 100% डेमोक्रेसी वाला ऑटोक्रेसी था। अभी क्या मेजॉरिटी के ऊपर निर्णय होता है। राजा दशरथ या बड़े बड़े राजा हुआ करते थे, वो मेजॉरिटी के ऊपर निर्णय लेते थे। वही निर्णय लेते थे जिसके अंदर सर्वसम्मति हो, सबकी सम्मति हो, तभी वो कार्य किया जाता था, तभी उसका निर्णय लिया जाता था। प्रायः जो राजा कहते थे उसके अंदर सभी लोगों का सहमति हो जाती थी, क्योंकि राजा उतना परफेक्ट हुआ करते थे। ये डेमोक्रेसी को प्रभुपाद जी ने कहा डेमन क्रेजी है। आज कुछ लोग बोलेंगे आइए से, बाद में वही लोग बोलेंगे इसके गलत है, इसको कोई आगे पीछे कोई जिम्मेदार नहीं है। कितना भी गड़बड़ होता है इसको कोई जिम्मेदारी ठहरा नहीं सकते डेमोक्रेसी में, क्योंकि डेमन क्रेजी है। तो लेकिन इधर दशरथ ने सोचा मैं धर्म को पालन करूं, राज धर्म के द्वारा मैं सत्य को छुपाऊंगा, क्योंकि धर्म श्रेष्ठ सत्य से। ऐसा विचार करते हुए तो उन्होंने दशरथ ने क्या किया, सबकी सहमति के सामने पश्चिम में राम को राजा बनाना चाहता हूं। तो जैसे दशरथ ने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा, सारे मंत्रियों ने कहा बहुत अच्छी बात है, इच्छामो। इतना भयानक सा एक कोलाहल जैसा मचने लगा सब सभा में कि दशरथ की बात सुन के कि राम को राजा बनाना है, इतने प्रसन्नता के साथ इतना जोर से हर्षोल्लास व्यक्त किया, विमान पूरा कंपन होने लगा। तब सब लोग दशरथ से पूछने लगे बहुत अच्छा निर्णय है, आप राम को राजा बनाओ। जब मैं आपके बात वापस बता रहा हूं, दशरथ ने पूछा अरे कम से कम इतना तो बोल देते कि कुछ साल आप पालन करो, राम तो अभी छोटा है। अभी मैंने कुछ गलत किया क्या, इतना साल कुछ धर्म को पालन नहीं किया क्या, मेरे अंदर कुछ दोष है क्या, आप इतने उत्साह के साथ बोल रहे हाँ राम को राजा बनाइए, अभी मैं राजा आपके पद में बैठा हूं, तो जरा सा सोचा होता तो मैं मुझे कितना खराब लगा होगा। थोड़ा एनकरेज करने के लिए तो बोला चाहिए ना। मान लो कोई प्रेसिडेंट के पदवी में है, बोले अभी मैं थक गया हूं किसी, इसको मैं प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं, बहुत अच्छा पदवी, बहुत अच्छा बना दीजिए, तो घबरा जाएगा कि नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या। ठीक है, जो भी है, अभी ग्राम का गुणों को वर्णन किया, उसके बाद शुरू हुआ सीन। सबको पता लग गया भगवान रामचंद्र की पट्टाभिषेक होना, तैयारी होने लगा, पूरा अयोध्या में दिवाली, रोज रोज का दिवाली, और निश्चय भी हो गया इस दिन को रामचंद्र का पट्टाभिषेक होने वाला है। दो दिन पहले एक बात है, मंत्रा जाके कैकेयी के पास गई। ये मंत्रा कौन है, क्या है, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन रामायण वाल्मीकि रामायण उसके विषय में ज्यादा नहीं कहा गया। ये आई आके कैकेयी का दिमाग खराब किया। याद है कैकेयी तुमको, कन्या शुल्क में दशरथ ने क्या किया था? तो कैकेयी ने सबसे पहला बोला नहीं नहीं नहीं, राम ही युक्त है, भले मैं नहीं करूंगी। लेकिन फिर भी मंत्रा बोलने लगी, देखो जैसे राम राजा बन जाएगा ना तो तुम्हारी सत्ता चली जाएगी। दशरथ को भले ही अनेकों पत्नियां थी, लेकिन उनका ज्यादा आसक्ति कैकेयी में थी। अभी कौशल्या जो है वो रानी बन जाएगी और तुम कौशल्या की दासी बनोगी, ऐसे ऐसे कुछ बातों कहने लगी। तब कैकेयी ने प्रण लिया बस भरत को राजा बनाना है, वो जाके कोक गुरु में जाके प्रवेश किया। दशरथ जो है बड़े उत्साह के साथ जाके इतनी खबर को बताना चाहते थे। पहले रामचंद्र को बुलाए दशरथ ने, दो बार बताया रामचंद्र ने दशरथ ने। सबसे पहला दशरथ ने रामचंद्र को अकेले में छत के ऊपर बुलाया, महल के छत के ऊपर बुला के उन्होंने कहा हे राम, तुमको राजा बनना है, मैं अपनी राज्य का भार तुमको सौंपना चाहता हूं। तब राम बिल्कुल शांत, ये कितना खबर सुनने के बाद उनका मन में ना हर्ष ना उल्लास, जैसी आज्ञा पिताजी। बाद में सभा में भी उन सबके सामने बताया, रानियां भी थे सबके सामने बताया, ताकि दशरथ जो है वो एकदम बिल्कुल, उनको मालूम था कैकेयी के मन में अगर ये बात आ गई कि भरत को राजा बनाना है तो भी जो मेरा बहुत खराब हो सकती है, इसलिए दशरथ ने दो बार रामचंद्र को कहा, रामचंद्र शांति से लक्ष्मण के पास जाते हैं, देखो ने कहा हे लक्ष्मण अभी तुम राजा बन गए हो। तो लक्ष्मण ने कहा ये क्या क्या कह रहे हो राम, आप राजा हो मुझे क्यों कहते हो। तब राम कहते लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण तुम मेरी आत्मा हो ना, अगर मैं राजा बनूंगा तो तुम राजा बनोगे, ये समझो तुम ही राजा हो। देखिए रामचंद्र की गुणों का कोई सीमा नहीं है, अद्भुत गुणों का कोई सीमा नहीं है। जैसे उनको दशरथ ने कहा तुम राजा हो, लक्ष्मण के पास जाके बोलते हैं राम, राम कहते हैं लक्ष्मण तुम राजा हो क्योंकि तुम मेरी आत्मा हो, यू आर माई सोल। पहले कहा गया था ना कि राम और लक्ष्मण के बीच में कैसा था, बहि प्राण युवा, बाहर का प्राण है एक दूसरे के लिए, ये भाई होता है, ये बड़ा भाई होता है, अगर कुछ भी मिलता है वो बड़ा भाई जो है वो छोटा भाई को देता है, ये तुम्हारा है। और छोटा भाई क्या करता है, हे मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं तो संभाल नहीं सकता इसको, आप ही हो। ये है सभ्यता, ये है वैदिक संस्कृति, ये है भाईचारा। तो इन दोनों के बीच संवाद हुआ इस प्रकार, और कई कई कोपगृह में जब प्रवेश की, दशरथ राजा दशरथ उधर कोपगृह में क्यों गई इसको विचार करने के लिए जाते हैं, और कैकेयी को बहुत बार मनाने के लिए प्रयास करने, और कैकेयी उठ के बड़े क्रोध से बोलने लगी कि राम को वनवास में भेजो, मेरा पुत्र भरत जो है वो राजा बनेगा। ये बात सुनते ही दशरथ महाराज को बहुत एक का हार्ट अटैक जैसा हुआ, उनका ऐसा वर्णन आता है कि काल रुक गया, उस प्रकार की बात हो उनके दर में लगा, यानी मृत्यु जैसा उनका महसूस होने लगा, रोने लगे और कैकेयी को बहुत मनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन कैकेयी का हृदय कठोर कुछ बोल नहीं रही है। उस समय रामचंद्र सबसे पहला कैकेयी के ढूंढ रहे थे, कल मेरा राज्य पट्टाभिषेक होने वाला है, कौशल्या के पास जाने से पहले, सुमित्र के पास जाने से पहले, रामचंद्र को इन तीनों माताओं में सबसे प्रिय कैकेयी थी। ये होता है, मान लो कि एक बच्चा है तो उनको अपनी माँ से ज्यादा जो छोटी माँ होती है ना वो ज्यादा प्रिय होती है, उसको हिंदी में छोटी माँ बोलते हैं, आंटी को क्या बोलते हैं, जो भी छोटी माँ समझ लीजिए, हाँ हाँ, आपकी जो मदर की जो सिस्टर है वो ज्यादा प्रिय होती है, ये ऐसा देखा गया है। राम को इतनी प्रिय थी कैकेयी को ढूंढते ढूंढते गए तो मिली नहीं, कोप रूप ऐसा है, दशरथ के पास है, दशरथ प्राय कैकेयी साथ में रहते थे, रामचंद्र गए, जब उन्होंने जाके देखा, सरदर्श आसे राम निषण्णम पितरम शुभे कैकेये सहितम दीनम मुखे परिशुष्यता, मुखे परिशुष्यता मुख सुख का हुआ था दशरथ का, और कैकेयी सहितम दीनम बड़े दीन अवस्था में बैठे थे, कैकेयी के साथ में थे, सददश आसने राम, दशरथ को आसन के ऊपर बैठाए हुए देखे, और सपितुः चरणो पूर्वम अभिवादयन विनीतवन, तो जाके रामचंद्र जाके दशरथ महाराज के चरण को छुए और कैकेयी को चरण को प्रणाम किए, राम इति उक्त्वा च वचनम वाष्प पर्युकल ईक्षण शासकं परिप्रीत्यन दीनो न ईक्षितुम न अभिभाषितुम। दशरथ महाराज एक ही शब्द बोले रामा, और उनकी आंखों में आंसू गिरने लगा, उनका हृदय बहुत भारी था और एक शब्द भी बराबर बोल नहीं पाते, उनका कंठ गदगद हो गया था। तब राम ने देखा दशरथ को, दशरथ की इस प्रकार की स्थिति आज तक उन्होंने देखा, और राम ने देखा कि दशरथ को ऐसी क्यों स्थिति हो गई, इतने शक्तिशाली है दशरथ महाराज, और ये भी इतने आनंद का समय की बात है उनका, इस प्रकार ऐसा लग रहा है कि सूर्यास्त होने के बाद क्या होता है उसी प्रकार उनके जीवन में सूर्यास्त हो गया, वो उस प्रकार दिखाई पड़ रहा है, ऐसा क्यों है, ऐसा विचार करते हुए दशरथ महाराज से कुछ बातें कहा रामचंद्र ने। हे दशरथ, आप हे पिताजी, आपका सब तबीयत ठीक है कि नहीं? अनेकों अनेकों बातें कहने के बाद भी कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, उनके आंखों से आंसू आ रहा है, उनको कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हो पा रहा था। तब कैकेयी से पूछते हैं रामचंद्र कि क्या हुआ हमारे पिताजी को, क्या उनका तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या उनके उनके और आपके बीच में कुछ बातें हुई क्या? तो ऐसा क्यों है कि मेरे पिताजी कुछ मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा हो सकता है क्या वो पिताजी मुझसे बहुत नाराज हैं? तो अनेकों अनेकों बातों के द्वारा रामचंद्र ने पूछा किसके, कैकेयी से। कैकेयी से पूछा कि आप बताइए कि मेरे पिताजी मुझसे क्यों बात कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं। एतद् आचक्षव मे देवी तत्वेन परिपृच्छता, किम निमित्तम अपूर्वे अयम विकारः मनुजा अधिपे। ये जो पूरा संसार की राजा है, उनके जो वास्तविकता है, क्यों इस प्रकार बोल नहीं पा रहे हैं, ये मुझे जरा कृपया बताइए। तब कैकेयी बोलती है, हे कैकेयी, हे राम, सुनो। वचन थोड़ा कठोर था उनका। न राजा क्वितो रामा, एक एक प्रकार का कठोर वचन था और साथ साथ में मुख में एक प्रकार का व्यंग्य हंसी थी। हे राम, न राजा कुपितो रामः, राजा जो है आपसे क्रोधित नहीं है। वैसरम नास्ति किंचन, कोई दुख नहीं है उनको। किंचन मनोगतम वत्सः, किंचित मनोगतम, थोड़ी सी मन में कुछ मन में कुछ दुख है, वो आपको बोल नहीं सकते, क्योंकि विशाते त्वाम, तुमसे बोलने के लिए डर रहे हैं। उनके मन में आपके प्रति कोई दुख नहीं है, कोई नाराज नहीं है और कोई खोज भी नहीं, थोड़ा सा कुछ खिन है और ये बात कहने में वो डर रहे हैं। तब बाद में कहती है, प्रियम त्वाम प्रियम वाक्यम वाणी नास्यते पर्यते। हे राम, तुम उनके लिए बहुत प्रिय हो और प्रिय व्यक्ति को अप्रिय बात कहने में संकोच होता है ना, वो कह नहीं सकते। तवद्वशम त्वया कार्यम यदेन नाश्रुतम मम। तो ये बात सुनो कि उन्होंने मुझे कुछ प्रॉमिस किया था, कुछ वाक्य को मुझे कहा था, कुछ शब्द वचन दिए थे, लेकिन समस्या ये है वो वचन केवल तुम्हारे द्वारा ही वो निभा सकते हैं। ये शमयम वरम दत्वा पुरा माम पूजता स पश्चातापेन राजा यथन ये प्रकृतिस्तता। तो बहुत साल पहले की बात है, येषा महात्म्यम वरम दत्वा, ये जो राजा है, संबोधित करते राजा जो है, वरम दत्वा, पूरा बहुत साल पहले की बात है, मुझे वरदान प्रदान किए थे, अभी क्या हुआ, प्राकृत हुआ। पति को भी व्यंग्य रूप में बात करती है, प्राकृत मतलब एक साधारण व्यक्ति के जैसा रो रहे हैं, क्योंकि उस वचन जो है मैंने क्यों दिया, इस प्रकार वो विचार कर रहे हैं, यानी वचन देके अभी पछता रहे हैं। देखो पछता रहा है, देखो कितना कठोर हृदय होगा इस प्रकार एक पति से बात करना, मुझे वचन देके पछता रहा है, देखो वो भी पुत्र के सामने, अभी राम के सामने। अतिसृज्या ददानीहं वरं मम विषाम पति। देखो अभी इनकी हालत देखो, क्यों रो रहे मालूम है, मुझे वचन तो दे दिया, अभी वचन को पूर्ण करने में अपने आप को असमर्थ मान रहे हैं, लेकिन ये जानो अभी ये रो रो के इस वचन को वापस देने का प्रयास कर रहे हैं ये दशरथ तुम्हारे पिताजी, अभी वो संभव नहीं है। पानी निकलने के बाद बांध डालोगे तो क्या फायदा, कोई फायदा तो है ही नहीं। ना निरर्थम गतजलम सेतुम, गतजलम सेतुम, जल चले ना जाने के बाद सेतु को बांधा जाए तो उसका कुछ फायदा है क्या। तब कैकेयी बात कर रही है, देखिए क्या बात करती है। समय के लोग भी बड़े फिलासफर्स हुआ करते थे, इतना दुष्ट लेकिन फिलासफी देखिए। धर्ममूलम इदम रामम विदितम च सतामपि तत् सत्यम न त्यजेन्द्र जा कुपितस्तव कृते यथा। धर्ममूलम सत्यम, धर्ममूलम सत्यम क्या अर्थ क्या है, धर्म का मूल सत्य है। अगर सत्य को पालन नहीं करता है तो धर्म को पालन नहीं हो पाएगा। अभी दशरथ क्या सोच रहा था, मैं सत्यम, सत्य जो है धर्म में प्रतिष्ठित है, यानी अगर मैं धर्म को पालन करूंगा सत्य अपने आप पालन हो जाता है। लेकिन इधर कैकेयी क्या कहती है, धर्म मूलम सत्यम, धर्म का मूल सत्य है, सत्य महत्वपूर्ण है, धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। उधर दशरथ ने सोचा ये सत्य को छुपाने के लिए मैं धर्म का पालन करूंगा। देखिए सत्य और धर्म जो है ये दोनों को साथ में लेके चलना पड़ता है। कैकेयी ने कहा राम को, सत्य होता है ना वो हमेशा शाश्वत रहता है, वो बदली नहीं होता है। धर्म बदली हो सकता है लेकिन सत्य बदली नहीं होगा। जब तुम जन्म नहीं लिए थे दशरथ पिता नहीं थे, ये पिता का धर्म बाद में आया, लेकिन उनके द्वारा दिया गया जो वचन है वचन हमेशा सत्य है। तो कैकेयी क्या बात कर रही है देखिए, आगे कहती हैं, यदि तवत पक्षते राजा शुभम वा यदि वा शुभम, अगर मैं आपको सत्य जो भी है कहूं शुभ हो या शुभ हो मैं तो आपको बताऊंगी और आपको जो करना है वो कर सकते हो। करिष्यसि, आपको जो करना है करो, करिष्यसि तव सर्ववाक्यामिति पुनस्तव हितुम। बाद में कहने लगी कि ये जो सत्य है जो मैं आपको कहने वाले हूं ये आपके अहित में होगा, यानी आपको ये अच्छा नहीं लगा होगा लेकिन फिर भी मुझे कहना है। तब राम इन सब बातों को सुन के कैकेयी से कहने लगे, ये तत्तु वचनम श्रुत्वा कैकेय समुदाहृतम उवाच व्यतितो रामस्य देवीं मृपसन्निधौ। तो उन्होंने कहा कि राम को बहुत दुख लगा उनके हृदय में, कैकेयी इस प्रकार क्यों कह रही है मुझे। तो इस प्रकार सोचते हुए राम की शब्दों को देखिए, आप मेरे ऊपर इतना शंका कर रहे हो, क्या मैं पिता की आज्ञा को मानने वाला नहीं हूं क्या, आप मेरे बारे में नहीं जानते हो मैं कितना पितृभक्त हूं। आज तक पिताजी ने जो कहा है उसको कभी तिरस्कार नहीं किया है। अगर आप जानो हे देवी, अहो सिद्धर्षते देवी वक्तुम मामिद्रिशम वचः, अहम ही वचनम राज्ञा पतेयम अपि पावके। अगर मेरे पिताजी कहेंगे आग में कूद जाओ तो मैं कूद जाऊंगा, भक्षसेयम विषम तीक्ष्णम, अगर मेरे पिताजी कहेंगे तुम ये विष को जहर पी लो पी जाऊंगा, मज्जते में भी समुद्र है समुद्र में जाके तुम डूब जाओ पर मैं डूब जाऊंगा। नियुक्ता गुरुणा पित्रा, क्योंकि पिता होता है गुरु के समान होता है, अगर वो मुझे कुछ भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तद्ध्रुवी वचनम देवी राजो यदि अभिकांक्षितम, तब वो बोलने लगी राम बोलने लगे कैकेयी को, आप जो राजा मुझे कहना चाहते हैं आप मुझे कह दो। और करिष्ये प्रतिज्ञेया च रामः, ये राम जो है ना, आप जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। करिष्ये प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो मेरे पिताजी मुझे कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनकी ओर से आप कहो तो मैं करने के लिए तैयार हूं। राम एक बहुत सुंदर शब्द बोलते, देखिए, द्विर न अभिभाषते, रामः द्विर न अभिभाषते। राम कभी भी दो शब्दों को नहीं कहता है। मतलब क्या है? अभी कहा मैं कर दूंगा, बाद में नहीं नहीं कर पाऊंगा। राम कभी ये दो शब्दों को नहीं कहता है, एक बार कह दिया तो कर देता है। कैकेयी के सामने राम इस प्रकार के शब्द इस्तेमाल करते हैं, कैकेयी रामः द्विर न अभिभाषते, तमावर तमार्जवः समायुक्तम अनार्थम सत्यवादितम, आप जो भी कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। तब कैकेयी को वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं, दारुणम वाच रामम कैकेयी वचनम, शब्द धारण, शब्द धारण, आपने शब्द सुना होगा दारुणम, इतना भयानक से कठोर वचनों को इस्तेमाल करते हुए कैकेयी कहने लगी, पुरा देवा असुरे युद्धे पुत्रा ते मम राघव, पित्रा ते मम राघव, बहुत सालों पहले की बात है, बड़ा युद्ध हुआ था, असुरों का देवताओं का युद्ध हुआ था, उसमें रक्षिते न वरोदत्ते, मैंने उनको रक्षा किया। ऐसा बात आता है कि दशरथ महाराज जब रथ चला रहे थे, दशरथ का अर्थ है दशरथ, दस दिशाओं में चलती है रथ, एक ही समय दस दिशाओं में चल सकती है। अभी आपने जो रथ देखा होगा आगे चलती है या पीछे चलती है, साइड में चल सकती है, एक ही साथ में कभी इधर जा सकते, ऊपर जा सकते, नीचे जा सकते, दस दिशाओं में चलने की सामर्थ्य रहने वाले दशरथ को चलाने वाले उस रथ का पहिया टूट गया था। तब कैकेयी ने क्या किया था, अपने हाथों से पहिया का एक्सल होता है ना, उसको हाथ रख के वो पहिया जो है वो हाथ को एक्सल के रूप में इस्तेमाल करके वो पहिया घुमाने लगी, यानी उसको रथ को संभाल के रखी। और दशरथ जी विजयी हो गए, देवताओं के पक्ष से उधर असुरों के ऊपर विजय हो गए। तब देवताओं ने बहुत आशीर्वाद दिया था, तब दशरथ ने इस कैकेयी की वीरता को देख के उन्हें कहा, ठीक है मैं आपको दो वरदान देता हूं, आपको वरदान देता हूं, वैसे कन्या शुल्क में भी था, अभी वरदान भी उन्होंने दिया था। तत्र में याचितो राजा भरतस्य अभिषेचनम, सीधा बोलने लगे, इसलिए मैंने अभी याचना किया है, ये वर मांगा है, वर दिया था उन्होंने, भरतस्य अभिषेचनम गमनम दंडकारण्ये तवाचा अद्य एव राघव, हे राम भरत को अभिशेषणम, उनको राजा बनाना है, और तुमको क्या करना होगा, दंडकारण्य में जाना होगा। यदि सत्य प्रतिज्ञा त्वाम, क्या बात कर रही है, देखिए कैकेयी राम से, अगर तुमकी सत्य प्रतिज्ञा है, त्वम पितरम कर्तुम इच्छसि, अगर तुम्हारी पिता की वाक्या को सत्य करना चाहते हो, क्या करो, आत्मानाम च नरो श्रेष्ठ मम वाक्यम इदम सुनो, मेरी वाक्य को अभी सुनो, क्या सुनो, स निर्देशो पितुः तिष्ठ यथा तेन प्रतिष्ठितम्, तुम्हारे जो पिताजी का आज्ञा को पालन करो, त्वया अरण्यम प्रवेशितम नव वर्ष पंचच, तुम अरण्य तो तुरंत चले जाओ, कितना साल के लिए, 9 साल और 5, यानी 14 साल के लिए आप चले जाओ, और भरत को राजा बनाना है। और किस राजा कब बनेगा भरत, जो सामग्री तुम्हारे लिए इकट्ठा हुआ था ना राजा बनाने के लिए अभिषेक की सामग्री, उसी सामग्री के द्वारा होगा। सप्त सप्त वर्षाणि दंडकारण्यम् आश्रितः, तुम जाओगे दंडकारण्य में, अभिषेकम इमं वक्तम जटाधारी धर इव वस, ऐसा नहीं अरण्य में जाओगे वैसे ही रहोगे राजा जैसा, नहीं, जटाधारी बन को रहना होगा। आगे कहती है, भरतः कौशलपुरे प्रशासस्तु वसुधाम इमाम, ऐसा नहीं केवल एक कौशलपुर का ही पूरा वसुधा, पूरा पृथ्वी का राजा बनेगा। नानार्थ समाकीर्णम सवाजी यथा कुंजराम, जितने भी अश्व है, जितने भी हाथी है, सारा संपत्ति के द्वारा, सारा शक्ति ऐश्वर्य, सारे सैनिक जो है भरत के होंगे। जब राम तुम जाओगे ना, सैनिकों के साथ में न जाना, एक भी सैनिक नहीं मिलेगा तुमको। ये तन त्वाम नरेंद्रो यम कारुण्यम समाप्लुतम, इसलिए ये बात आपको कहने के लिए दशरथ महाराज से हुआ नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी है, मैं आपको इस बात को कह रही हूं। तो राम ने इस प्रकार सुना। ये इस प्रकार राम सुनने के बाद उनके चेहरे में क्या हुआ, क्या किस प्रकार की भावना हुई, इसका वर्णन करते वाल्मीकि जी। इति तस्याम पुरुषम वदन्याम न चैव राम प्रविशेष शोकम। ये सब शब्द सुनने के बाद भी न चैव राम प्रविशेष शोकम, राम के मन में शोक जरा सा भी नहीं गया। प्रवृद्धे चापि महानुभावो, क्यों, ये महानुभाव है रामचंद्र। राजा तो पुत्र व्यसमिना पिदत्ते, इसको महानुभाव कहा जाता है। महान व्यक्ति वो है, ये नहीं कि जो महान कार्य कर पाता है वो महान व्यक्ति है। संसार में कितने भी निंदा भी आए, कितना भी दुख भी आए, मन में जरा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं, जरा सा भी शोक नहीं। कल राज्य का पट्टाभिषेक होने वाला है, वनवास भेजने वाले हैं, खबर तुरंत मिला, लेकिन राम के मन में जरा सा भी कोई प्रदूषण नहीं, कोई कलुषण नहीं। इस प्रकार तद अप्रियम, इस प्रकार की अप्रिय बात को श्रुत्वा न विवते रामः कैकेयीं च इदम् अब्रवीत। कैकेयी को इस प्रकार बोलने लगे, क्या बोल रहे हैं, एवमस्तु गमयिष्यामि वनम वस्तुम अहम तु अतः। सीधा उन्हें बोलेंगे एवम अस्तु, एवम अस्तु मतलब सही है, कोई समस्या नहीं, ओके। इसे अंग्रेजी में तो ओके, संस्कृत भाषा में एवमस्तु गमयिष्यामि वनम वस्तुतम अहम तु अतः, मैं अभी वन जा रहा हूं। कब जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं। जटाचरी जटाचीर धरी राज्ञा प्रतिज्ञान अमुपालयन, मैंने प्रतिज्ञा किया ना उसको निश्चित रूप में पालन करूंगा। इदम तु ज्ञातुम इच्छामि किमर्थम मम महीपति, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये राजा है, इतने शक्तिशाली है, ये होने पर भी क्यों मेरे साथ इस प्रकार क्यों नहीं बात कर रहे, अच्छे से क्यों नहीं बात कर रहे हैं। हाँ, कोई संकोच मत करो, मैं निश्चित रूप में तुरंत ही चले जाऊंगा और भरत को मैं निश्चित रूप में राजा के रूप में आप राजा बना सकते हो। हितेन गुरुणा पित्रा का, हाँ, अगर कोई गुरु है, कोई पिता है, अगर कुछ भी बात कहे, ये राम जो है ना बिना सोच विचार के उसको पालन करेगा। अलीकम मानसम तु एकम हृदयम दहति इव मे, लेकिन मेरा एक समस्या है कि मेरा हृदय जो है वो बहुत जल रहा है। राजा स्वयं दशरथ मुझे स्वयं नहीं, क्यों नहीं कहा, वो क्यों नहीं कह पा रहे, क्या उनके मन में ऐसी शंका है? अगर वो कहेंगे राम को दुख लगेगा या राम पालन नहीं कर पाएगा, इस प्रकार सोचते होंगे, देखो मैंने कितना बड़ा पितृद्रोह किया है, पिता मेरे ऊपर इतना विश्वास नहीं है ऐसा लग रहा है। अगर पिता बोल रहे हैं ये बोलने की जरूरत नहीं माता, अगर आप भी बोल देते ना, कैकेयी को कहते राम आप चले जाओ, मैं स्वयं चले जाता, सीता को लक्ष्मण को सबको छोड़ के मैं चले जाता। किन पुनर्मनुजा इंद्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः, अस्तित्व में कोई व्यक्ति पिताजी का आज्ञा को तिरस्कार करता है वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। वैसे अनेकों अनेकों शब्दों के द्वारा कैकेयी को राम ने बताया कि मैं जा रहा हूं, ऐसा कहते हुए लक्ष्मण भी साथ में था। लक्ष्मण को तो क्रोध आ रहा था, तुरंत रामचंद्र ने कैकेयी और को प्रणाम किया। प्रणाम करके जब बाहर जाके जितने भी सामग्रियां थी उन सारे सामग्रियों को भी प्रणाम किया जिसके द्वारा पट्टाभिषेक होने वाला था। राम ने लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण, ये जो अभिषेक के जो जल इधर रखे हुए सिंह रखा हुआ है जिसके द्वारा मेरे सिंहासन पट्टाभिषेक होने वाला है, वही जल के द्वारा मैं स्नान करके मैं इस वस्त्रों को निकाल के वनवासी के वस्त्रों को धारण करूंगा। लेकिन तुरंत ने कहा, नहीं ये भी जरूरत नहीं है, मैं खुद कुएं के पास जाऊंगा और जल निकाल के मैं स्नान करके इन वस्त्रों को निकाल के वनवासी का वस्त्र को धारण करूंगा। और लक्ष्मण को कहा, हे लक्ष्मण अभी चलो, इस बात को मैं कौशल्या को कहूंगा। रामचंद्र जी कौशल्या के पास जाते हैं और कौशल्या के पास जाती, कौशल्या तुरंत स्वागत करती रामचंद्र को। रामचंद्र को स्वागत करते हुए कहती कौशल्या, कौशल्या राम को कहती है, हो राम जल्दी आओ जल्दी आओ, और तुम्हारे लिए मैं बहुत सुंदर भोजन बना के रखी हूं, ये स्वीकार करो। जैसे रामचंद्र आए, कौशल्या को जो अर्पण किया उन्होंने कहा कि बस ये स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी प्रण लिया है कि मुझे वनवास जाना है। और जैसे वनवास जाने का बात कौशल्या को राम ने सुनाया, कौशल्या पूछने लगी, क्या बात कर रहे हो राम? तो रामचंद्र ने सब कुछ बताया जो जो घटनाएं घटी। ये बात सुनके कौशल्या रोने लगी, इतना जोर से रोने लगी और अपने पति को दोषी ठहराने लगी, आज तक तुम्हारे जो पिता है दशरथ उन्होंने केवल कैकेयी को साथ दिया है, मुझे आशा थी अगर तुम राजा बनोगे तो मेरी भी कोई पूछने वाला होगा इस संसार में, इस महल में, और मैं तुमको जाने नहीं दूंगी। ऐसे बहुत सारे बातें हुआ कौशल्या और रामचंद्र के बीच में, और रामचंद्र कौशल्या को बहुत समझाते हैं। लक्ष्मण और रामचंद्र के बीच में बड़े वापस बातचीतें होती है। लक्ष्मण ने कहा, राम को मैं जाने नहीं दूंगा, अभी इन शत्रुओं को मार दूंगा, वो कर दूंगा, एक और तो बहुत हंगामा हुआ, बहुत दोनों के बीच में बहुत बातचीत हुई। बातचीत हो रही थी उस समय, राम कौशल्या को समझाने के लिए प्रयास करते हैं। समझाने के लिए प्रयास करते हुए कौशल्या को कहते हैं, हे कौशल्या, दशरथ मेरे पिता है और आपकी पति है, और पति का आज्ञा मानना जो है पत्नी का कर्तव्य होता है, और पिता का आज्ञा मानना जो है वो पुत्र कर्तव्य होता है। भगवान रामचंद्र कौशल्या को पतिव्रता धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसा बहुत सुंदर उपदेश है, किस प्रकार राम ने कौशल्या को किस प्रकार समझाया। ये पतिव्रता धर्म का उपदेश सीता और भगवान रामचंद्र के बीच संवाद जो है, उसके बाद सीता किस प्रकार अपने जो वनवासियों का ड्रेस कैसे पहना, जूट का जो ड्रेस वस्त्र कैसे पहनी सीता, पहनने के बाद भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण को, सीता और लक्ष्मण में कन्विंस किया रामचंद्र को, हम भी आपके साथ में चलेंगे। अयोध्यावासी किस प्रकार अनुभव करने लगे रामचंद्र के वियोग को, और अंत में किस प्रकार सुमित्रा लक्ष्मण को प्रवचन देती है। उस प्रवचन में सुमित्रा के मुख से रामायण के सबसे प्रसिद्ध श्लोक का उच्चारण हुआ, उसको हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन बात यह है, ये जो अयोध्या कांड है इसमें क्या चीज प्रधान है? इस अयोध्या कांड में अलग अलग लोगों के साथ हमारा जब संबंध होता है, उस संबंध के अनुसार कैसे व्यवहार करना चाहिए, पति के साथ कैसे रहना चाहिए, पत्नी को कैसे रहना चाहिए, पुत्र को कैसे रहना चाहिए, भाई को कैसे रहना चाहिए, इन सब बातों का विशेष वर्णन हमको अयोध्या कांड में प्राप्त होता है। तो कल हम ज्यादा जोर देंगे कर्तव्यों के ऊपर, भाई का कर्तव्य, पति का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य क्या होता है, राजा का कर्तव्य क्या होता है, इन कर्तव्य के ऊपर जोर देंगे। क्योंकि जीवन का आधार जो होता है वो संबंध होता है। अगर आपके साथ में रहने वाले लोगों के साथ संबंध बराबर नहीं है, आप जिस घर में रहते हो वो घर जो है वो नरक से भी गया गुजरा है। अगर संबंध अच्छा है, कितने भी गरीबी क्यों ना हो, कितने भी तकलीफ क्यों ना हो, सब कुछ अच्छा रहता है। आजकल सबसे बड़ी समस्या जो है संबंध, भाईचारा सब खत्म हो चुका है। रामायण में हम इस बातों को देख सकते हैं। इसलिए हम कल रामायण की जो पूर्णाहुति है, सुमित्रा का जो लक्ष्मण के प्रति जो प्रवचन है, उसके द्वारा हम करेंगे। स्वस्ति प्रजेभ्य परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिषाम् गोब्राह्मणस्य शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। थोड़ा बैठे रहे तो अच्छा रहेगा, इतना जल्दी क्या है आपको, वैसे घर में तो लेट में सोते हो। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सुशालिनीम् देशोऽयं शोभरितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः अधुना सदनः सन्तु जीवन्तु सादृशीं सतां चरित्रं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकाक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् शृण्वन् रामकरा भक्त्या यं पादं पदमेव वा सयादि ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्ववेद नमस्कृते विस्तरसे सम्भवते ताते भूतमङ्गलम् यन्मङ्गलं सुवर्णस्य विनाटकल्पति यत्पुरा अतिर्मङ्गलं प्रादात् ताते भवतु मङ्गलम् त्रीन्विकरणं प्रकर्णन्तो विष्णोर्मदित तेजसा यदासीन् मङ्गलं राम ताते भवतु मङ्गलम् ऋतवः सागरद्वीपा वेदलोकदिशश्च ये मङ्गलानि महाबाहो दिशश्च तव सर्वदा अयेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वाध्यात्मना भावकृते स्वभावात् करोमि यज्ञत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि।